जय राधमा भव कुंज बिहारे।
यह प्रवचन श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 1 श्लोक संख्या 42 पर श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा दिया गया।
गोपी जाना बाला भाला धारे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
यतो यतो धावति धैव चोदितम् मनोविकारात्मक पापांचसु गणेश माया रजते देहयासो प्रपद्यमाना सा तेन जायते। ओम ज्ञातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलक्य चक्षुरन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितानेन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपां सराजतं सहगना रघुनाथन्वितं तं सजीवं सद्वैतं सुवधूतं वैजना साहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णापदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। वंच कल्प तर्गश्च कृपा सिंधु भयैव च पतितानां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यतो यतो धाति दैव चोदितं मनोविकारात्मकं आपपञ्चसु गणेश माया रचितेषु देहि प्रपद्यमाना सह तेन जायते। भगवत का वासुदेव जी उपदेश दे रहे हैं। जैसे हमने इस अध्याय में देखा कि जब देवकी की शादी हुई तो कंस अभी बहन को ले जा रहे थे अपने घर, तो एक आवाज़ से उन्होंने ये सुना कि तुम मूर्ख हो, तुम्हारी बहन का आठवां बच्चा तुम्हें मार देगा। और कंस जैसे उसने ये सुना उसने ये निश्चित कर लिया, क्योंकि मेरी ये बहन का आठवां बच्चा मुझे मारेगा, मुझे इस बहन को मारने दो। इतनी दुष्टबुद्धि के थे कि बाएं हाथ से उन्होंने अपनी बहन के बालों को पकड़ लिया और दाएं हाथ से तलवार निकाल दी। तो वासुदेव ने उनको उपदेश देना शुरू किया, तुम ये क्यों कर रहे हो। तो इन श्लोकों में वासुदेव उपदेश दे रहे हैं और इन श्लोकों के साथ प्रभुपाद जी ने बहुत लंबा तात्पर्य लिखा है, जिसके द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि हर श्लोक का बहुत ही गहरा अर्थ है। तो आज के श्लोक में वासुदेव जी हमें बता रहे हैं कि मृत्यु के समय मनुष्य सकाम कर्मों में निहित मन के सोचन अनुभव करने और चाहने के अनुसार शरीर विशेष प्राप्त करता है। तो जहां हमारा मन होगा मृत्यु के समय उसी प्रकार का ध्येय हमें प्राप्त करना पड़ेगा। भगवद गीता में भगवान कहते हैं यम यम वापी स्मरण भवाम, जहां मन है मृत्यु के समय उसी प्रकार का ध्येय तुम्हें प्राप्त करना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत में हम श्रीमद् भागवत के पांचवें स्कंद में हम महाराज भारत की कथा पढ़ते हैं कि भारत महाराज थे पूरे पृथ्वी के राजा, पर उन्होंने सारा भौतिक सुख, सुंदर पत्नी, धन को त्याग कर जंगल में चले गए तपस्या करने के लिए। जंगल में जब वो गए तो एक दिन उन्होंने एक हिरण के छोटे बच्चे को पैदा होते हुए देखा, और जन्म देते ही उसकी माता मर गई। तो महाराज भारत इस हिरण के बच्चे को पालने लगे जैसे एक माता अपने बच्चे को पालती है, और इस बच्चे के प्रति इतने आकर्षित हो गए कि एक दिन जब वो बच्चा उनकी नगर से, उनकी नजरों से दूर था तो उसको ढूंढ रहे थे, और ढूंढते ढूंढते उनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि मृत्यु के समय वो हिरण के बच्चे का सोच रहे थे, उनको अगला ध्येय एक हिरण के रूप में प्राप्त करना पड़ा। पर भगवान ये भी कहते हैं कौन थे प्रति जानी न में भक्त पर नश्य थी, मैं जो भक्त है वो कभी नष्ट नहीं होगा। तो थोड़ी देरी उन्होंने हिरण के रूप में जन्म प्राप्त किया, और जल्दी फिर उन्हें एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया जिनमें उनका नाम था जद भारत। दूसरे शब्दों में जैसे यह वासुदेव जी कह रहे हैं कि मृत्यु के समय जहां व्यक्ति का मन होगा उसी प्रकार का ध्येय हमें प्राप्त करना पड़ेगा। अगर हम भौतिक कार्यों में जुड़े हैं, सकाम कार्यों में जुड़े हुए हैं तो मृत्यु के समय भी उसी प्रकार का विचार रहेगा। कई बार लोग सोचते हैं कि एक रूप से ये सरल है कि आज हम भौतिक विषय में मन को जोड़ेंगे, पर मृत्यु के समय हम मन के द्वारा भगवान का चिंतन कर लेंगे, ये संभव नहीं हो पाएगा। प्रकृति का नियम यह है कि जिन कार्यों में आपने मन को जोड़ा है जिंदगी भर, मृत्यु के समय भी मन वहां ही जुड़े रहेगा। अगर आप जिंदगी भर भौतिक विषयों का चिंतन करते आए हो तो मृत्यु के समय भी मन वहां ही जुड़ेगा। जैसे कि अगर कोई विद्यार्थी बिल्कुल तैयारी नहीं करे और ये सोचे कि परीक्षा में बैठने से मैं पास हो जाऊंगा तो वो तो संभव नहीं हो सकेगा। तो इसलिए वासुदेव जी कह रहे हैं मृत्यु के समय मनुष्य सकाम कर्मों में निहित मन के सोचन अनुभव और करने वाले चरण के अनुसार शरीर विशेष प्राप्त करता है। तो शरीर को ध्येय प्राप्त होता है जिस प्रकार के आप विचार रखते हो उसके अनुसार। जो शरीर है वासुदेव जी समझा रहे हैं ये शरीर प्राप्त होता है मन के विचारों के अनुसार। तो आप देख सकते हो कि मन को वश में लाना कितना महत्वपूर्ण है अगर आप आध्यात्मिक जीवन को सफल बनाना चाहो। भगवद गीता के छठे अध्याय का नाम है ध्यान योग, और इस अध्याय में अनेक श्लोकों के द्वारा भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं कि हमें मन को बंधु बनाना है, शत्रु नहीं। मन बंधु जब माना जाता है जब हम मन के अनुसार, मन के द्वारा उन्हीं बातों को स्वीकार करते हैं जो कि भक्ति के लिए अनुकूल हो, और मन शत्रु जब माना जाता है कि जब मन उन विषयों का चिंतन कर रहा है जो कि भक्ति के लिए प्रतिकूल हो। जब आप इंद्रिय तृप्ति इत्यादि विचारों का स्मरण करते हो तो फिर मन जो है आपका शत्रु है। तो मन को जीतना बहुत अवश्य है अगर आप आध्यात्मिक जीवन में सफलता चाहते हो। प्रभुपाद जी ने कहा कि अगर आप सारे विश्वों को जीत लोगे पर आपने मन को नहीं जीता तो आपने कुछ भी प्राप्त नहीं किया, और अगर आपने मन को जीत लिया तो फिर आपने असली जीत प्राप्त की है। भगवान गीता में अनेक स्थानों में ये कहते हैं मन क्रोध जीतो। भगवान कहते हैं मन मना बावा मत भक्तो मद्याजी मन नमस्कारो, मन के द्वारा मेरा चिंतन करो, मेरी पूजा करो, मेरी उपासना करो, मेरी शरण में आओ। क्योंकि अगर आपने मन को जीत लिया तो आध्यात्मिक जीवन सरल बन जाएगा। प्रॉपर तात्पर्य में भगवद गीता का जो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है उसका वर्णन करते हैं, 34वां श्लोक 6 अध्याय का, चंचलाई मना कृष्णा प्रमति भावा दृढ़म तशहे निकरा मन्ये वयो इव सुदुक्ष करो। भगवान अर्जुन ने भगवान से कहा, भगवान ने जो 6 अध्याय में कहा कि तुम मन को जीतो, मन को जीतो, तो अर्जुन ने कहा कि मन को कैसे जीते, चंचला ही मना कृष्णा, ये जो मन है ये तो बहुत ही चंचल है, सच बात है, बहुत ही अत्यंत चंचल। आप इधर बैठे हो क्लास में श्री श्री राधा पार्थ साधी जी के चरणों में, तो आपका मन दौड़ सकता है न्यूयॉर्क लंदन जिधर जाना चाहो। मन तो बहुत ही चंचल है, ठीक है, बलवान है, कितनी बार मन सुनता है पर समझता नहीं और हतीला है। तो अर्जुन ने कहा कि आप कह रहे हो कि आपका चिंतन करूं पर मन को जीतना तो बहुत ही कठिन है। अर्जुन ने कहा कि वायु को वश में ले आएंगे वो ज्यादा सरल है, वायु को वश में लाना, पर मन को वश में लाना इससे भी ज्यादा कठिन है, क्योंकि मन तो बड़ा बलवान है। तो फिर क्या उपाय है, क्या हम ये कह दें कि मन चंचल है, अर्जुन ने भी कहा कि मन को स्थिर करना कठिन है, तो हम प्रयास भी नहीं करेंगे? नहीं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस विषय की चर्चा करते हैं, तात्पर्य में कहते हैं कि भक्ति योग की विधियों के पालन के द्वारा आप मन को वश में ला सकते हो। जैसे कि भगवद गीता के 12वें अध्याय में भगवान ने कहा चिंतन करो मेरा सदा निरंतर, तो अर्जुन ने कहा ये तो इतना सरल नहीं है। फिर भगवान ने कहा कि भक्तियों की विधियों का पालन करो और भक्तियों की विधियों के पालन के द्वारा तुम्हारे में ये भावना उत्पन्न होगी मुझे प्राप्त करने की। तो इसी विषय की चर्चा प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में कर रहे हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं मन को सत अभ्यास से वश में किया जा सकता है और योग पद्धति की यही उद्देश्य है कि भक्ति की विधि के पालन के द्वारा, जैसे कि भक्ति योग आरंभ होता है भगवान के दिव्य नामों के उच्चारण से। जब प्रहलाद महाराज से उनके पिता ने पूछा ये बताओ कि तुम स्कूल में क्या सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा तुमने प्राप्त की है, हिरण्यकश्यपु ने संध और अमरका को ये कहा था कि मेरे बेटे से भगवान को भुला दो और ये विस्थापित करो कि मैं हूं सर्वश्रेष्ठ, तो उन्होंने ये उम्मीद की थी कि इस प्रकार का उत्तर प्राप्त होगा। पर प्रहलाद महाराज जी ने तो नवदा भक्ति का ज्ञान दे दिया। नवदा भक्ति का ज्ञान देते हुए क्या कहा, शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम आचरण वंदनम दर्शनम सख्यम आत्मनिवेदनम। इसी नवदा भक्ति का की चर्चा गोविंद दास भी करते हैं अपने बाजा घोड़े मन भजन। गोविंद दास जी कहते हैं ये जो जीवन है इसकी तुलना करते हैं एक कमल के फूल के पत्ते पर अगर पानी का बूंद हो। वो कहते हैं जिस पर पानी का बूंद किसी समय भी नीचे गिर सकता है ये जीवन किसी समय भी समाप्त हो सकता है। तो क्या उपाय है, बाजा हरि पादा नित्य रे, किसी न किसी रूप से हमें हरि की शरण स्वीकार करनी चाहिए। तो हरि की शरण आप कैसे स्वीकार करोगे, तो ये उपाय वो देते हैं नवदा भक्ति का, शरणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो हमारा विषय है मन को कैसे जीतना, मन को कैसे वश में लाना, क्योंकि जब तक हम मन को नहीं जीते आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना बहुत कठिन रहेगा। तो उपाय शास्त्र में दिया गया है वो है नर्मदा भक्ति का पालन। तो विष्णु स्मरणम का अर्थ है मन को वश में लाना। क्यों? क्योंकि विष्णु स्मरण का अर्थ है भगवान का स्मरण करना, उनके नामों का, रूपा का, लीला का, गुना का। और जब आप मन के द्वारा इन विषयों का चिंतन करोगे तो खुद ही खुद मन वश में आ जाएगा। तो प्रश्न यह है कि स्थिति पर हम कैसे पहुंचे कि हम मन के द्वारा भगवान का चिंतन कर सके। तो ये आरंभ होता है श्रवणम कीर्तनम के द्वारा। जितने सावधानी से हम श्रवणम कीर्तनम का पालन करेंगे उतनी ही सरलता से विष्णु स्मरण सफल हो पाएगा। और अगर हम श्रवणम कीर्तनम सावधानी से नहीं करेंगे तो फिर विष्णु स्मरण भी संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे श्रवणम कीर्तनम के विषय में कि हमें बिल्कुल सावधानी से सुनना चाहिए, सावधानी से जाप करना चाहिए, सावधानी से भगवत गीता का उपदेश सुनना चाहिए, और इसके कारण ये विष्णु स्मरण संभव हो पाएगा। तो भक्ति योग की विधियों के पालन के द्वारा रूप गोस्वामी जी कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी जी शुद्ध भक्ति की स्थापना करते हैं, शुद्ध भक्ति के लक्षणों का वर्णन करते हैं और हमें अनेक नियम देते हैं जिसके द्वारा हम भक्ति की विधियों का पालन कर सकें। परंतु रूप गोस्वामी कहते हैं कि सब जो नियम दिए जा रहे हैं इन सब का मूल उद्देश्य एक ही है। वो क्या है? कि हम सबको उस स्थिति पर पहुंचाना कि हम हमेशा कृष्णा का स्मरण कर सकें और कभी कृष्णा को भूले नहीं, सदा हम उनका स्मरण कर सके और कभी उनको भूले नहीं। चाहे हम जप करें, सेवा करें, हमें उस उद्देश्य पर पहुंचना है कि हम निरंतर 24 घंटे भगवान का चिंतन करो और कभी भी भगवान को भूलो नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें उपाय दिया है। क्या है चैतन्य महाप्रभु जी का उपाय? क्या है? सब सो रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जी हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम करो नस्ते व नस्ते व नस्ते व गति रहने था। ये है चैतन्य महाप्रभु का उपाय जिसका वर्णन प्रभुपाद जी तात्पर्य में कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ये हमें समझा रहे हैं कि अगर आप मन को वश में लाना चाहते हो तो चैतन्य महाप्रभु जी के उपाय का उपयोग करना पड़ेगा। और उपाय क्या है? सावधानी के साथ हरे नाम का उच्चारण। हरे नाम का उच्चारण तो हम करते हैं पर हमें सावधानी के साथ करना चाहिए। रोज सुबह हम मंदिरों में 10 नाम अपराधों का वर्णन करते हैं पर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर 10वें नाम अपराध का वर्णन करते हुए ये समझाते हैं कि इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि लापरवाही के साथ जाप करना। दूसरे शब्द में जब हम जप माला करते हैं तो बिल्कुल सावधानी से करना चाहिए। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं। जैसे मैंने कहा था प्रभुपाद जी का बहुत लंबा तात्पर्य इस श्लोक का, लगभग 2 पेज का तात्पर्य है। प्रभुपाद जी जब एक लाइन भी डिक्टेट करते थे तात्पर्य का तो उनको 5-10 मिनट लगता था क्योंकि वो एक शब्द बोलते थे फिर रुकते थे, एक शब्द बोलते थे रुकते थे। और आप अंदाजा लगाओ 2 लाइन का इतना लंबा पर्पोट प्रभुपाद जी ने लिखा है तो इस श्लोक का कितना गहरा अर्थ है। तो प्रभुपाद जी आगे समझाते हैं कि हरे नाम का निरंतर उच्चारण करके हम मन को वश में ला सकते हैं। और तात्पर्य में प्रभुपाद जी महाराज अमरीश एक बड़े प्रसिद्ध श्लोक की रचना करते हैं। कौन सा है वो श्लोक? सर्व मन कृष्ण पदार अरविंदयो, सर्व मन कृष्ण पदार अरविंदयो। हे मेरा प्रिय मन, तुम भगवान के चरण कमलों की शरण लो। महाराज अमरीश पृथ्वी के राजा थे, आजकल तो हमारे राजनीतिक नेता बिल्कुल रुचि नहीं लेते आध्यात्मिकता में, तो प्राचीन समय के जो राजा थे, राजा भी थे और ऋषि भी थे, और इनमें हमें अम्बरीश महाराज ने बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। अम्बरीश महाराज राजा थे, पर अपने शरीर और अंगों का उन्होंने उपयोग किया भगवान की सेवा में। तो मन के द्वारा वो सदा भगवान का चिंतन करते थे, इसलिए उनके मन में बिल्कुल घबराहट नहीं थी। एक समय दुर्वासा मुनि ने अपने सीके से एक राक्षस पैदा कर दिया। दुर्वासा मुनि के हृदय में अम्बरीश महाराज के प्रति थोड़ी ईर्ष्या थी, तो जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने एक राक्षस पैदा कर दिया उन्हें जलाने के लिए। पर अम्बरीश महाराज बिल्कुल घबराए नहीं, वो मन के द्वारा भगवान का चिंतन कर रहे थे। उन्होंने ये नहीं कहा भागो भागो या कुछ, वो मन के द्वारा भगवान का चिंतन कर रहे थे, जिसका ये परिणाम हुआ कि भगवान के सुदर्शन चक्र ने अम्बरीश की रक्षा की और दुर्वासा का पीछा किया। इसी प्रकार एक और घटना पढ़ते हैं पांचवें स्कंद में, जद भारत के विषय में ही। जैसे मैंने कहा था थोड़े समय पहले कि भारत महाराज को हिरण के रूप में जन्म ग्रहण करना पड़ा, क्योंकि मृत्यु के समय उनका मन हिरण के बच्चे के तरफ था। पर ज्यादा समय उन्हें इस देह में नहीं रहना पड़ा और जल्द ही उन्होंने जन्म लिया एक ब्राह्मण कुल में, जिनका उनका नाम था जद भारत। जद भारत के रूप में उनके पिता का, उनकी माँ का देहांत हो गया था, तो उनके पिता की एक, उनकी एक सौतेली माँ भी थी, वो थोड़ी देर बाद उनके पिता का भी देहांत हो गया। जब पिता का देहांत हो गया तो उनके सौतेली भाइयों ने और माँ ने कुछ आदर दिए बिना उन्हें बहुत छोटा छोटा काम देते थे। तो उनकी खेती थी, तो उनको उस खेती में रख दिया चौकीदारी करने के लिए। तो जद भारत खेती की चौकीदारी कर रहे थे तो एक दिन डाकू ने आकर उसे उन्हें छुड़ा लिया, और डाकुओं की इच्छा ये थी कि उनके गुरु, उनके नेता की खुशी के लिए उनके नेता को एक बेटा चाहिए था। तो कई दुर्गा देवी जी के जो भक्त कम बुद्धि के हैं वो हर प्रकार का अत्याचार भी करते हैं। डाकू ने जद भारत को छुड़ा लिया। जद भारत बड़े खूबसूरत शरीर के थे, लंबे हते कुर्ते, तो उन्होंने सोचा कि हम इसे अभी दुर्गा देवी जी को अर्पण करेंगे भेंट के रूप में। जैसे हम प्रसाद चढ़ाते हैं ना, एक कम बुद्धि के लोग कई बार जीवित व्यक्ति को चढ़ाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम ये जद भारत को दुर्गा के चरणों में अर्पण करेंगे, क्योंकि हमें हमारे गुरु को एक पुत्र चाहिए अपनी औलाद में। तो उन्होंने उनको तेल से मसाज किया, और उनको काटने ही वाले थे, पहले तेल से मसाज किया, बड़े सुंदर वस्त्र पहनाए, लिटा दिया। पर जल भारत बिल्कुल घबरा ही नहीं, आप मन को जीत सकते हो, मन को जीतना कठिन है पर असंभव नहीं। आप समझे, कठिन है पर असंभव नहीं है। अगर कोई व्यक्ति यह कहे कि यह असंभव कार्य है तो वो गलत है। भगवान स्वयं कहते हैं भगवद गीता में कि प्रयास के कारण, प्रयास के द्वारा, भक्ति योग की विधियों के पालन के द्वारा आप इस चंचल मन को वश में ला सकते हो। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए भक्ति योग की विधियों का पालन करके। भागवतम के प्रथम स्कंद में हम पढ़ते हैं कि अर्जुन को बहुत निराशा अनुभव हुई जबकि भगवान इस भौतिक जगह को छोड़कर अपने धाम लौट गए। अर्जुन ने उन घटनाओं का स्मरण आरंभ किया जिन घटनाओं में भगवान ने इन पांडव को बचाया था, और फिर अर्जुन ने भगवान की जो गीता की शिक्षा थी उसका स्मरण आरंभ किया। और जैसे ही अर्जुन ने भगवान के गीता के शिक्षा का स्मरण आरंभ किया, अर्जुन को ऐसे महसूस हुआ कि भगवान स्वयं वहां उपस्थित हैं, स्वयं वहां उपस्थित हैं। और फिर जो अर्जुन की बेचैनी थी और निराशा थी वो दूर हो गई, और भक्ति, और भक्ति योग में भगवान के अर्जुन ज्यादा निकट गए। तो प्रभुपाद जी उन श्लोकों के तात्पर्य में समझाते हैं कि जिस प्रकार अर्जुन ने महसूस किया कि भगवान उनके साथ हैं। गीता की शिक्षा, गीता के श्लोकों का स्मरण करके उसी प्रकार अगर हम भी गीता के श्लोकों का गीता के उपदेश का स्मरण करेंगे तो हम भी ये महसूस करेंगे क्या कि भगवान स्वयं हमारे साथ में है। आप ये महसूस कर सकते हो कि भगवान स्वयं आपके साथ है। केवल ये अवश्य है कि आप गीता के श्लोकों का स्मरण करो। इसीलिए जीव की तपस्या के विषय में भगवान कहते हैं एक तपस्या यह है कि आप जीव के द्वारा वैदिक साहित्य का उच्चारण करो। अगर उदाहरण के लिए आप ये निर्णय कर लो कि हमने ये श्लोक सीखना है और आप गीता के महत्वपूर्ण श्लोकों की लिस्ट बना लो। एक अभी बीबीटी ने किताब छापी है श्लोक यूज बाय प्रभुपाद, तो बीबीटी बॉम्बे ने भी एक किताब छापी है। ये किताब आप सब भक्तों के पास होनी चाहिए और आप वो किताब शुरू करो पहले श्लोक से। रोज एक श्लोक ले लो या एक श्लोक को एक दिन में नहीं करना चाहते तो एक श्लोक को बेशक एक हफ्ते में करो और वो श्लोक का अर्थ सारा दिन पढ़ते जाओ, सोचते जाओ, विचार करते जाओ। इस प्रकार आपका आध्यात्मिक ज्ञान भी बढ़ेगा और मन भी जो है वश में आएगा, मन भी आपका बंधु बनेगा और आध्यात्मिक जीवन सरल बन जाएगा। अगर मन के द्वारा केवल भौतिक विषय और इंद्रिय तृप्ति के विचार रहेंगे तो यही मन आपका दुश्मन है। तो भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि हमें पखंडी नहीं बनना चाहिए। पखंडी उसे कहा जाता है जो ऊपर से तो व्यवहार रखेगा कि मैं भक्त हूं पर मन के द्वारा केवल यही सोच रहा है इंद्रिय तृप्ति का। प्रभुपाद जी एक कथा सुनाते थे। एक समय एक वैश्य का घर था जिसके सामने एक ब्राह्मण का घर था। जो ब्राह्मण था वो शास्त्रों को पढ़ने का दिखावा करता था और वह अपने बरामदे या कमरे में बैठकर शास्त्र तो खोलता था पर मन के द्वारा वो यही सोच रहा था कि वैश्य का क्या धंधा है, कौन गिरा खा रहा है वगैरह। और जो वैश्य थी वो ब्राह्मण को देखती थी सामने के मकान में और वो कहती थी कहां मैं फंस गई ये पाप के काम में, मुझे भी ये ब्राह्मण जैसा जीवन मिले तो मैं भी शास्त्र पढ़ूं, मुझे ये गंदा पाप का काम करना पड़ता है धन कमाने के लिए। तो एक दिन उस इलाके में आग लग गई, उस आग में दोनों ही मर गए, वैश्य भी और ब्राह्मण भी। तो जो यामदूत हैं वो आए ब्राह्मण के पास उसे नरक में ले जाने के लिए। तो यामदूत ने कहा या उस ब्राह्मण ने कहा आप गलत पते पर आ गए हो, आपको तो वैश्य के पास जाना चाहिए था, मेरे पास क्यों आ रहे हो, मैं तो जिंदगी भर शास्त्र पढ़ता था। तो फिर यामदूत ने समझाया कि तुम दिखावा करते थे शास्त्र पढ़ने का और तुम उस वैश्य के भोग विलास की कहानी की जीवन का सोचते रहते थे। और वैश्य पाप के कार्य में जुड़ी हुई थी पर मन के द्वारा यही सोच रही थी कि मैं कैसे ब्राह्मण का कार्य कर सकूं। तो ये बहुत अवश्य है कि हम मन के द्वारा मन को जीतें और मन को वश में लाएं। तो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि ये संभव हो सकता है एक ही साधन के द्वारा और वो है ये हरे नाम के उच्चारण के द्वारा। मन हरे नाम के सावधान उच्चारण के द्वारा मन जो है हमारा स्थिर बनेगा और जब हमारा मन स्थिर बनेगा तो फिर ये चंचल मन हमें सताएगा नहीं। ये बलवान मन बलवान है पर इसे हम स्थिर बना सकते हैं अगर हम श्रद्धा के साथ इन नियमों का पालन करें। श्रद्धा और भक्ति के साथ इन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। आगे प्रभुपाद जी समझाते हैं जैसे हमने आरंभ में कहा था और जैसे श्लोक में कहा गया है कि मन होगा मृत्यु के समय उसी प्रकार का ध्येय हमें प्राप्त होगा। सद असत योरी जन्म सु, ये भगवद गीता के 13वें अध्याय का श्लोक है कि जो आत्मा है वो ध्येय प्राप्त करती है अपने गुणों की संगति के द्वारा। जैसे कि अगर सत्व गुण में आपका मन जुड़ा हुआ है तो आप स्वर्ग लोक तक पहुंच सकते हो। अगर आप राजस गुण के प्रभाव में पड़े हो तो इस पृथ्वी लोक में आपको जन्म मिल जाएगा, और अगर आप तामस गुण के प्रभाव में हो तो कहां जन्म मिलेगा? नरक में जन्म मिलेगा। जैसे और जिस प्रकार की बुद्धि हम रखेंगे उसके अनुसार ही हमें जन्म स्वीकार करना पड़ेगा। भगवद गीता के 17वें अध्याय में भगवान हमें समझाते हैं कि मन की क्या तपस्या है, बुद्धि की क्या है, मन की क्या है, शरीर की क्या है और जीव की क्या है। तो मन की तपस्या के विषय में भगवान हमें समझाते हैं, एक संतुष्ट रहो। संतोष, भौतिक जीवन में कोई व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता। हर व्यक्ति ये चाहते हैं कि इन्हें और मिले, ठीक है ना। जैसे हमारे कई धनी व्यक्ति मित्र हैं, उनके पास आगे 100 पीढ़ी के लिए धन है, पर जब भी भगवान के लिए समय नहीं है, वो यही चाहते हैं और। पर आध्यात्मिक जीवन में हम संतोष रहते हैं जो भी हमें प्राप्त हो। थोड़ा प्रयास करते हैं पर अधिक प्रयास नहीं। अब ये नहीं कि हम जज भारत की नकल करें, अमरीश महाराज की नकल करें और हम यही सोचेंगे अभी हम भगवान का चिंतन करेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे। ये नहीं कि हमने अभी प्रचार करना सब बंद कर देना, हम कहेंगे हम यहाँ बैठकर अपने आश्रम में भगवान का चिंतन करेंगे और खुद ही खुद लोग आ जाएंगे, किताबें खरीद लेंगे, दान दे देंगे, खुद ही मंदिर की सुरक्षा हो जाएगी। नहीं, प्रयास तो करना पड़ेगा। जैसे कि भगवान ने अर्जुन से कहा, तस्मा सर्वेश कलेश मनस्मा युद्ध चा, हे अर्जुन तुम इस युद्ध में लड़ो, पर किस शर्त पर? मेरा चिंतन करते हुए, मेरा चिंतन करते हुए तुम तीर चलाओ। ये नहीं कहा कि भौतिक विषयों का चिंतन करते हुए तुम तीर चलाओ। भगवान ने कहा मेरा चिंतन करते हुए। तो उसी प्रकार भगवान का चिंतन करते हुए हमें प्रयास करना है, परिश्रम करना है, पर इतना अधिक परिश्रम नहीं कि हमारी भक्ति की विधियों के पालन के लिए हमारे पास समय नहीं हो। ओवर इंडेवर नहीं। जैसे कि रूप गोस्वामी जी कहते हैं किस प्रकार भक्ति नष्ट हो जाती है, अत्याहारा प्रयश्च प्रज्वल पनयमाग्रह जन संघर्ष लोलियम च सभी भक्ति विनश्यति। तो प्रयश्च आवश्यकता से अधिक परिश्रम करना। जैसे कई बार हम जब प्रचार करते हैं देखते हैं लोग इतना समय दे देते हैं धन कमाने में कि आध्यात्मिकता के लिए उनके पास समय ही नहीं होता, तो ये गलत है। तो इसलिए भगवान गीता में कहते हैं कि मन की एक तपस्या ये है कि तुम संतोष रहो, संतुष्ट रहो। फिर आगे सरलता। सरलता का अर्थ है सादा जीवन। हम आध्यात्मिकवादियों के लिए नियम ये है सादा जीवन और ऊंचा विचार। तो हमें सादा रहना चाहिए। भौतिक दुनिया में सब दिखावे के लिए रहते हैं, सब दिखावे के लिए बड़ी मोटर खरीदते हैं, महंगे कपड़े खरीदते हैं, बड़े मकान खरीदते हैं, हाँ सब ये एक दूसरे को दिखाना चाहते हैं क्या कि हम बहुत धनी हैं, हम बहुत कामयाब व्यक्ति हैं समाज में। पर आध्यात्मिकवादियों का नियम है सरलता, सादा जीवन और ऊंचा विचार। फिर गंभीरता। गंभीरता का अर्थ है सदा ये सोचते रहना कि एक पल का भी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। एक क्षण का भी दुरुपयोग होगा तो सारे पृथ्वी के धन से आप इस एक क्षण को वापस खरीद कर नहीं ला सकते। ये है गंभीरता का अर्थ। गंभीरता का अर्थ ये नहीं कि आप कभी हंसते नहीं। अगर आप प्रभुपाद की तस्वीरों को देखो तो आप देखते हो अक्सर कि प्रभुपाद हंस रहे हैं अपने भक्तों के साथ। ये नहीं कि आप कभी हंसो नहीं, पर गंभीरता का अर्थ है कि जहां तक जीवन के लक्ष्य का विषय है आप एक क्षण का भी दुरुपयोग नहीं करना चाहते, क्योंकि आप जानते हो कि एक पल कभी दुरुपयोग हो जाए तो आप इसको फिर से खरीद कर नहीं ला सकते सारे पृथ्वी के धन के साथ। तो इसलिए जीवन की प्राप्ति के लिए, जीवन उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हम बड़े गंभीर रूप से सब जीवन को बिताते हैं, गंभीरता के साथ। गंभीरता जो है ये मन की एक तपस्या है, क्योंकि भौतिक मन तो हमेशा यही चाहता है और इंद्रिय तृप्ति के विचार रखता है, पर जो आध्यात्मिक मन है वो यही सोचता है कि किस प्रकार जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो पाएगा, और इसलिए जब भी उसको मौका मिले उसका लाभ उठाता है भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। फिर आत्मा स्वयं का अर्थ है मन को और इंद्रियों को वश में लाना, सेल्फ कंट्रोल। जैसे कि भगवान ऋषभदेव जी ने कहा, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वांश ये सौख्यम अनंतम। उन्होंने कहा, हे प्रिय पुत्र, तुम तपस्या का पालन करो। तो आत्मा स्वयं कैसे किया जाए? साधारण व्यक्ति का बोलो चाय छोड़ने के लिए, उसको चाय छोड़ने में 10 साल लग जाते हैं भारत में, हा? और दूसरी चीजों को छोड़ने में कितना समय लगता है। पर ये अनुभव किया गया है सारे विश्व में कि एक समय जब कोई भक्तों की संगत प्राप्त करना आरंभ करे और हरि नाम का उच्चारण आरंभ करे, तो बड़ी सरलता के साथ जो दोष हैं उन्हें हम त्याग सकते हैं, क्योंकि भक्ति की विधियों के द्वारा जो बल आता है और जो सुख आता है, जो आनंद आता है, उसकी तुलना किसी और भौतिक कार्य के द्वारा नहीं की जा सकती। तो आगे जीवन की शुद्धि, और जीवन की शुद्धि का अर्थ है जीवन की ये हृदय की जो मैल है इसे दूर करना। और जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है, चेत दर्पण मार्जनम भव मार्ग्नि निर्वापनम, हृदय की जो मैल है ये दूर हो सकती है एक ही उपाय के द्वारा, और वो एक उपाय है क्या? हरि नाम के द्वारा। वो एक उपाय है ये जीवन की मैल को दूर करने के लिए। तो अगर हम इन मन की तपस्याओं का पालन करेंगे तो ये चंचल मन स्थिर हो जाएगा, और यही मन फिर आपको भगवान के धाम लौटाएगा। तो वासुदेव जी इस श्लोक के द्वारा कंस को ये कह रहे हैं, तुम क्यों घबरा रहे हो कि आठवां बच्चा तुम्हें मारेगा? इस मत घबराओ, मन जो है जैसे इस श्लोक में कहा गया है, मन जो है इसको वश में लाना बहुत ही महत्वपूर्ण है आध्यात्मिकवादियों के लिए। और हम सब ये अनुभव कर सकते हैं कि अगर हम प्रयास करेंगे तो इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकोगे। प्रयास करना हमारे हाथ में है, जैसे कि मन के द्वारा भगवान के सुंदर विग्रह का सोचो, रोज आप भगवान के विग्रह का दर्शन प्राप्त करते हो, सोचो आज भगवान ने कौन से रंग के वस्त्र पहने थे, ये है एक साधन। दूसरा है जो भगवत का श्लोक सुनते हो, अगर आप क्लास में सोओगे नहीं, अगर सोओगे तो फिर तो बिल्कुल सुनाई नहीं देगा, तो अगर क्लास में जो श्लोक सुना है उसका चिंतन करो, उस विषय का चिंतन करो, सारा दिन सोचो कि भगवान ने ये कहा और प्रभुपाद जी ने ये कहा, बस। फिर प्रहलाद महाराज के समान मन का चिंतन करो, प्रहलाद महाराज ने कहा, सचेत तो विमुक्त चेत स इंद्रिया तो माया सुखाया बड़ा मूढ़ तो भी मूढ़ कि जब मैं देखता हूँ कि किस प्रकार भौतिक वाले व्यक्ति प्रयास कर रहे हैं दुख की स्थिति को सुख की स्थिति में बदलने के लिए, मुझे अत्यंत शोक होता है। और फिर प्रहलाद महाराज का उत्साह लेकर आगे प्रचार करो। प्रहलाद महाराज का जीवन सदा खतरे में था, आपका मालूम है? उनके पिता ने क्या नहीं किया उनकी भक्ति को रोकने के लिए, उनके स्कूल के चारों तरफ उन्होंने चौकीदार रखे थे ये देखने के लिए कि कोई वैष्णव लोग अपना वेश बदल के अंदर तो नहीं जा रहे मेरे बेटे के दिमाग को खराब करने के लिए। उनको पता था कि हर समय उनका पिता यह प्रयास कर रहा है उनको उनकी मौत के लिए, जब भी उन्होंने प्रचार किया। हमारे ऊपर तो इस प्रकार का कोई भय नहीं है, चारों तरफ इस मंदिर के चौकीदार तो नहीं है, इसलिए कि आप प्रचार मत करो। तो हमें प्रहलाद महाराज के समान चिंता रख के प्रयास करना चाहिए भगवान का उपदेश आगे देने के लिए। तो चिंतन क्या है? चिंतन यह है कैसे प्रचार करोगे। प्रचार भी जब करोगे तो सोचकर प्रचार करना चाहिए, क्या बोलना, किस प्रकार का व्यवहार रखना। तो मन के द्वारा ये सोचो कैसे आप इन सब लोगों को, दुखी व्यक्ति को सुखी बना सकते हो, कैसे हम लोगों को भगवान के चरण कमलों में पहुंचा सकते हो। और जैसे भगवान कहते हैं, ये तमाम प्रपद्यन्ते, जितनी मात्रा में कोई मेरी शरण में आता है उसी मात्रा में मैं उसे बुद्धि देता हूँ। जैसे कि साधारण जीवन में जितना प्रीमियम भरते हो उसके अनुसार आपको इंश्योरेंस कवरेज मिलती है, जैसा दाम भरते हो वैसा माल मिलता है,
उसी प्रकार जितना प्रयास करोगे मन को वश में लाने के लिए, उतना ही ज्यादा आप भगवान को प्रसन्न कर सकोगे और उतनी मात्रा में आप आध्यात्मिक जीवन में सफलता प्राप्त करोगे। तो इस श्लोक के तात्पर्य में इसी विषय पर बल दिया जा रहा है कि हमें मन को शुद्ध बनाना है। और जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, भक्ति योग वैराग्य विदे निज भक्ति योग, इस संस्था का उद्देश्य क्या है कि हर के हृदय में असली त्याग पैदा करना, नकली त्याग नहीं। ये नहीं कि अगर जीव है तो हम जीव का दुरुपयोग करेंगे, या धन है तो धन का दुरुपयोग करेंगे, कोई संपत्ति है तो संपत्ति का दुरुपयोग करेंगे, नहीं। इन सब चीजों का उपयोग करेंगे पर भगवान के सेवा में, ये है असली वैराग्य। तो इसी विषय पर बल दिया जा रहा है कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो व्यक्ति कृष्णा भक्ति को स्वीकार करे उसमें त्याग जागृत होगा, और ये जागृत होगा अगर हम भक्ति की विधियों का पालन कर रहे हैं। तो संक्षेप में इस श्लोक में इस विषय पर बल दिया जा रहा है कि हमें मन को जीतना चाहिए, मन को बंधु बनाना चाहिए, और मन के द्वारा इंद्रियों को वश में लाना चाहिए। और जो व्यक्ति प्रयास करता है मन को जीतने के लिए, भगवान उसका सहयोग देते हैं। और खास करके अगर हम सावधानी के साथ जाप करेंगे तो जितने सावधानी से करेंगे उतना ही भगवान हमें बुद्धि देंगे उनको समझने के लिए। तो हम सबको प्रयास करना चाहिए, और प्रयास और हमने अमरीश मनाज और जत भारत की कथाओं के द्वारा ये बताया कि किस प्रकार इन्होंने अपने मन को वश में रखा था, अमरीश मनाज ने, और जत भारत किस प्रकार उनको सजा भुगतनी पड़ी क्योंकि उनके मन के द्वारा वो स्मरण कर रहे थे हिरण के बच्चे का। तो हमें भी प्रयास करना चाहिए मन को जीत कर भगवान के सेवा में लगाने के लिए। हरे कृष्ण।